एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में स्वागत। लाओत्से और ताओते चिंग नाम तो शायद सुने ही होंगे।
हाँ बिल्कुल।
और रहस्यमय बूढ़े गुरु जिनकी बातें अब सोचिए 2500 साल बाद भी उतनी ही ताजी लगती हैं। पर उनके बिना कुछ किए सब कुछ करने यानी वो वही के पीछे का असली मतलब क्या था, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उनके विचार क्या वाकई काम आ सकते हैं, चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं।
हाँ ये सचमुच दिलचस्प है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके होने पर भी आप कह सकते हैं सवाल उठते हैं।
सही।
उससे दुनिया की सबसे ज्यादा अनुवादित किताबों में से एक जुड़ी है, बाइबल के बाद शायद इसी का नंबर आता है।
ताउते चिंग।
हाँ ताउते चिंग, महज 5000 अक्षर, लेकिन उनमें ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हो।
तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां ये विचार पनपे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का चीन। वो कैसा दौर था जिसने लाओत्से जैसी सोच को जन्म दिया? सुनने में आता है बहुत उथल पुथल थी उस समय।
बिल्कुल, वो चीन का वसंत और शरद काल था, जिसे स्प्रिंग इन ऑटम पीरियड कहते हैं। जो राजवंश जो उस वक्त सत्ता में था वो कमजोर पड़ रहा था।
अच्छा।
हाँ, केंद्रीय सत्ता एक तरह से बिखर रही थी और अलग अलग राज्य ताकत के लिए आपस में लड़ रहे थे। समाज में नियम कायदे टूट रहे थे, एक तरह की नैतिक अराजकता फैल रही थी। तो सोचिए, ऐसे माहौल में लोग जवाब तलाश रहे होंगे कि भाई सही रास्ता क्या है, समाज कैसे चले, जीवन का अर्थ क्या है।
हाँ, और शायद इसीलिए वो 100 विचारधाराओं का दौर कहलाता है,
हाँ
100 स्कूल्स ऑफ थॉट, जहां हर कोई अपने अपने समाधान पेश कर रहा था।
सही पकड़ा, बिल्कुल। इसी बौद्धिक मंथन के बीच लाओत्से के विचार उभरे, लेकिन उनके विचार उस समय के ज्यादातर विचारकों से आप कह लीजिए बहुत अलग थे,
कैसे?
खासकर उनके मशहूर समकालीन कन्फ्यूशियस से।
हाँ, कन्फ्यूशियस।
जहाँ कन्फ्यूशियस समाज को नियमों, रिवाजों, शिक्षा, पदानुक्रम, इन सब से सुधारना चाहते थे, लाओत्से मानो कह रहे थे रुको, जरा प्रकृति की सुनो, उसकी लय को समझो।
ये तो बड़ा विरोधाभास लगता है, एक तरफ नियम कायदे सामाजिक ढांचा, दूसरी तरफ प्रकृति की सहजता।
बिल्कुल।
लेकिन इस बूढ़े गुरु, या कुछ लोग बूढ़ा बच्चा भी कहते हैं,
हाँ,
इस लाओत्से के बारे में हम जानते कितना है? मतलब ये इतिहास है या सिर्फ कहानियां?
देखिए ज्यादातर तो कहानियां ही हैं, या किंवदंतियां कह लीजिए। सिमा कियान ने उनके बारे में लिखा जरूर, पर वो भी सदियों बाद लिखा।
अच्छा।
माना जाता है कि उनका असली नाम लियर था और वो जो दरबार में अभिवेखागार यानी आर्काइव्स के रखवाले थे। तो जाहिर है इससे उन्हें पुराने ज्ञान, ग्रंथों और सरकारी तरीकों तक पहुंच मिली होगी, लेकिन उनकी जीवनी वो काफी धुंधली है।
जैसे
जैसे वो जन्म के समय सफेद बाल वाली कहानी है, या कन्फ्यूशियस से वो कथित मुलाकात जहां लाओत्से ने उनकी औपचारिकता को टोका था, ये सब बातें उनके रहस्य को और गहरा करती हैं, पुख्ता सबूत कम है।
पर एक कहानी जो उनके दर्शन से सीधे जुड़ती है वो है उनका दरबार छोड़कर चले जाना। ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने?
अनुमान यही है कि शायद उस राजनीतिक उथल पुथल और नैतिक पतन से उनका मोह भंग हो गया था। उन्हें लगा होगा कि ये इंसानी समाज अपने बनाए नियमों में इतना उलझ गया है कि प्रकृति की सहज लय से, वो जो ताओ है, उससे दूर हो गया है। तो वे पश्चिम की ओर निकल पड़े, सभ्यता से दूर, एकांत की तलाश में।
और वहीं पश्चिमी सीमा पर मिले हैं वो द्वारपाल येन शी, जिन्होंने उनसे वो मशहूर गुजारिश की।
हाँ कहानी यही कहती है कि येन शी ने उन्हें पहचाना, उनकी विद्वत्ता को समझा और उनसे आग्रह किया कि दुनिया से ओझल होने से पहले वे अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी शिक्षाएं दर्ज कर दें। और तब लाओत्से रुके और उन्होंने वो करीब 5000 अक्षर लिखे जो बाद में ताओ ते चिंग बन गए, यानी मार्ग और उसके गुण का शास्त्र।
और उसके बाद?
उसके बाद वे कहाँ गए, क्या हुआ, कोई ठीक ठीक नहीं जानता। कुछ कहते हैं भैंस पर सवार होकर पश्चिम में कहीं गायब हो गए, कुछ किंवदंतियां तो उन्हें बुद्ध का गुरु भी बताती हैं, पर ये सब आप समझ लीजिए कल्पनाएं ज्यादा हैं।
तो ये किताब ताओ ते चिंग ये इतनी खास क्यों है? इसके केंद्र में क्या है?
देखिए, इसके केंद्र में है ताओ, दाओ। अब इसे समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पहले ही अध्याय में लाओत्से खुद कहते हैं जिस ताओ के बारे में बताया जा सके वह शाश्वत ताओ नहीं है।
मतलब जिसे शब्दों में बांधा ना जा सके।
बिल्कुल, ये ब्रह्मांड का परम सत्य है, वो अवर्णनीय अदृश्य स्रोत जिससे सब कुछ निकलता है और अंत में सब कुछ उसी में वापस चला जाता है। ये कोई व्यक्तिगत भगवान नहीं बल्कि प्रकृति का, अस्तित्व का मूलभूत सिद्धांत या पैटर्न है। इसे तर्क से नहीं, सहज ज्ञान से महसूस किया जा सकता है।
अवर्णनीय, तो फिर इससे महसूस कैसे करें? क्या यहीं पर वू वे का विचार आता है जिसका मतलब अक्सर लोग अकर्मण्यता समझ लेते हैं?
हाँ, और ये गलतफहमी बहुत आम है। वू वे का मतलब आलस या कुछ न करना बिल्कुल नहीं है।
तो फिर क्या है?
इसका सही अर्थ है सहज क्रिया या बिना प्रयास के कर्म।
एफर्टलेस एक्शन,
मतलब जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि चीजों के प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल बिठाकर काम करना।
अच्छा, जैसे?
जैसे पानी बहता है, वो रुकावटों से टकराता नहीं, उनके आसपास से रास्ता बना लेता है।
हाँ, पानी का उदाहरण दिलचस्प है। पानी कितना नरम होता है पर चट्टान को भी काट देता है।
सही, तो वू वे का मतलब है सही समय पर, सही मात्रा में, कम से कम, लेकिन सटीक हस्तक्षेप करना, बिना अनावश्यक जोर लगाए, बिना संघर्ष के लक्ष्यों को पाना। सोचिए, आज की दुनिया हसल कल्चर पर कितना जोर देती है, ज्यादा करो और ज्यादा करो,
बिल्कुल, हर तरफ यही है।
और नतीजा बर्नआउट, तनाव, थकान। लाओत्से 2500 साल पहले कह रहे थे कि असली कामयाबी शायद कम करने में है, प्रकृति की लय के साथ, उसके प्रवाह के साथ चलने में है। यह आज के लिए कितना प्रासंगिक है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, यिन और यांग का, वो विपरीत लगने वाली चीजों का संतुलन।
हाँ बिल्कुल, लाओत्से ने इस बात को पहचाना कि जिन्हें हम अक्सर विपरीत समझते हैं, जैसे अंधेरा और रोशनी, नरमी और सख्ती, होना और ना होना, वे असल में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं।
अच्छा,
हाँ, असली संतुलन दोनों के बीच में है, दोनों को स्वीकार करने में है। उनका एक बहुत मशहूर कथन है अध्याय 28 में, अपनी मर्दानगी को जानो लेकिन अपनी स्त्रीत्व को बनाए रखो।
इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब सिर्फ लिंग भेद से नहीं है, ये गुणों के संतुलन की बात है। मजबूती के साथ साथ लचीलापन, कर्मठता के साथ साथ ग्रहणशीलता, असली ताकत इसी संतुलन में छिपी है, न कि किसी एक छोर पर टिके रहने में।
और जब कोई इस तरह ताओ और वू वेई के साथ जीता है तब क्या होता है? क्या यही वो अवस्था है जिसे ते दे कहते हैं?
हाँ, काफी हद पर। ते को अक्सर पुण्य या सद्गुण या वर्चू कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ नैतिक अच्छाई नहीं है, ये वो स्वाभाविक शक्ति, वो आंतरिक क्षमता, वो असर डालने की ताकत है जो ताओ के साथ लयबद्ध होने पर अपने आप बिना किसी दिखावे या प्रयास के पैदा होती है।
अच्छा, और इसी अवस्था में व्यक्ति पू यानी अनगढ़ लकड़ी की तरह हो जाता है, ये क्या है?
हाँ, पू अनगढ़ लकड़ी या अनकार्व्ड ब्लॉक, इसका मतलब है मौलिकता, सहजता, बनावट से मुक्ति। जैसे बच्चे होते हैं, दुनिया के नियमों, अपेक्षाओं, बनावटों से बेपरवाह, अपनी सहज प्रकृति में स्थित। लाओत्से मानते थे कि समाज हमें तराश कर, कंडीशनिंग करके जटिल बना देता है, जबकि असली ताकत और शांति उस अनगढ़ मौलिक अवस्था में लौटने में है।
तो लाओत्से का दर्शन व्यक्तिगत जीवन के लिए तो बहुत गहरा है, पर क्या उन्होंने शासन या राजनीति के बारे में भी कुछ कहा? उस उथल पुथल के दौर में जरूर सोचा होगा।
हाँ हाँ, बिल्कुल सोचा, और उनका राजनीतिक दर्शन भी उनकी मूल विचारों से ही निकलता है, यानी वू वे पर आधारित है।
कैसे?
वे न्यूनतम शासन, मिनिमल गवर्नमेंट के पक्षधर थे। उनका मानना था कि सबसे अच्छा शासक वो है जिसके होने का लोगों को पता भी न चले।
अरे?
हाँ, मतलब लोग सोचे कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब स्वाभाविक रूप से चल रहा है, शासक पृष्ठभूमि में रहे, दिखे नहीं।
ये तो आज के नेताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल उल्टा।
बिल्कुल, और इसी सोच को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस रूपक में ढाला है अध्याय 60 में। एक महान राष्ट्र पर शासन करना एक छोटी मछली पकाने जैसा है।
छोटी मछली पकाने जैसा?
हाँ, मतलब जरा सा ज्यादा हेर फेर किया, जरा ज्यादा पलटा, जरा ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश की तो मछली टूट जाएगी, बिखर जाएगी। हल्के हाथ की जरूरत है, बहुत सावधानी की।
वाह।
इसकी तुलना उन शासकों से कीजिए जो हर चीज पर अपना अंकुश रखना चाहते हैं, हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। लाओत्से कहते थे कि ज्यादा कानून और नियम असल में लोगों को स्वाभाविक रूप से अच्छा बनने से रोकते हैं, उन्हें जटिल और चालाक बनाते हैं।
ये विचार उस समय तो क्रांतिकारी रहे होंगे, खासकर जब कन्फ्यूशियस जैसे विचारक नियमों और रिवाजों पर इतना जोर दे रहे थे। इन दोनों की सोच में ये बुनियादी फर्क क्यों था?
देखिए, कन्फ्यूशियस का मुख्य उद्देश्य था समाज में व्यवस्था लाना, नैतिकता स्थापित करना, जो उस वक्त की जरूरत भी थी। उन्होंने अतीत के एक सुनहरे दौर को आदर्श माना और कर्तव्य, शिक्षा, सामाजिक रिश्तों के पदानुक्रम, अनुष्ठानों पर बहुत जोर दिया। उनका रास्ता बाहरी सुधार का था, समाज को संगठित करने का था।
और लाओत्से?
लाओत्से का रास्ता आंतरिक खोज का था। वे मानते थे कि बाहरी नियम थोपने के बजाय अगर हर व्यक्ति अपने अंदर के ताओ से जुड़ जाए, अपनी सहज प्रकृति को पा ले, तो समाज अपने आप संतुलित हो जाएगा। वे प्रकृति को अपना गुरु मानते थे, किसी अतीत को नहीं। उनका दृष्टिकोण ज्यादा रहस्यमय, ज्यादा सहज था।
उनकी वो कथित मुलाकात की कहानी पीछे इसी फर्क को दिखाती है, जहाँ कहते हैं कन्फ्यूशियस लाओत्से से मिलकर इतने प्रभावित हुए या शायद हक्के बक्के रह गए कि उनकी तुलना एक अजय रहस्यमयी ड्रैगन से की।
हाँ, वो कहानी प्रतीकात्मक है। वो लाओत्से की सोच की गहराई और उसकी पकड़ में ना आने वाली प्रकृति को दर्शाती है। कन्फ्यूशियस तर्क और सामाजिक व्यवस्था के दायरे में सोच रहे थे, जबकि लाओत्से उस दायरे से कहीं परे अस्तित्व के मूल स्रोत की बात कर रहे थे।
तो इन विचारों का असर क्या हुआ? लाओत्से की विरासत क्या रही?
उनकी विरासत बहुत गहरी और बहुआयामी है। एक तरफ वे दार्शनिक ताओवाद यानी डाओजिया के स्रोत माने जाते हैं, जो जीवन जीने का एक तरीका है।
और दूसरी तरफ?
और दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ उनके इर्द गिर्द एक संगठित धर्म, जिसे डाओजियाओ कहते हैं, वो भी विकसित हो गया।
अच्छा, मतलब दार्शनिक विचारों से धार्मिक कर्मकांड तक, ये कैसे हुआ?
हाँ, ये अक्सर होता है। धार्मिक ताओवाद में लाओत्से को देवता का दर्जा दे दिया गया, ताइशाम लाओजुन कहा गया उन्हें। इसमें फिर अमरता पाने की साधनाएं, कीमियागिरी, देवी देवता और कई तरह के जटिल कर्मकांड जुड़ गए, जो लाओत्से के मूल दर्शन की सादगी से काफी अलग लगते हैं। यहाँ तक कि बाद में तांग वंश के सम्राटों ने तो उन्हें अपना पूर्वज बताकर ताओवाद को राजकीय धर्म का दर्जा भी ले दिया था।
कमाल है, पर उनका असर सिर्फ चीन या धर्म तक ही सीमित नहीं रहा है ना? आजकल तो दुनिया भर में उनकी बातें होती हैं।
बिल्कुल नहीं, ताओ ते चिंग का, जैसा मैंने कहा, दुनिया भर की शायद हर बड़ी भाषा में अनुवाद हुआ है। पश्चिमी दर्शन में आप देखिए हाइडेगर जैसे दार्शनिकों ने इससे प्रेरणा ली।
और आजकल?
आजकल तो बहुत प्रासंगिक है। पर्यावरण आंदोलनों को प्रकृति के साथ उनके सामंजस्य का विचार बहुत आकर्षित करता है।
हाँ, ये तो है।
लीडरशिप और मैनेजमेंट थ्योरी में सर्वेंट लीडरशिप या सूक्ष्म मार्गदर्शन के जो विचार हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी वूवे से मिलते जुलते हैं।
अच्छा।
हाँ, और माइंडफुलनेस और मनोविज्ञान में स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और जाने देने, लेटिंग गो की जो बात होती है, उसमें भी ताओवादी सिद्धांतों की झलक मिलती है।
यानी उनकी 2500 साल पुरानी बातें आज भी उतनी ही या शायद आज की भागदौड़ में ज्यादा जरूरी हो गई हैं।
मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमारी दुनिया जटिलताओं, रफ्तार, तनाव और हर चीज को नियंत्रण करने की कोशिशों से भरी पड़ी है।
हाँ।
ऐसे में लाओत्से की सादगी, सहजता और प्रकृति के प्रवाह के साथ चलने की बातें एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह लगती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि शायद कम प्रयास में, या कहें सही प्रयास में, ज्यादा पाया जा सकता है अगर हम सही दिशा में हों, प्रवाह के साथ हों।
उनके कुछ कथन तो वाकई हमें रोककर सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे वो यात्रा वाला, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। कितना सरल पर कितना गहरा।
हाँ, ये हमें बड़ी बड़ी योजनाओं से घबराने के बजाय बस पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है। ये दिखाता है कि बड़े लक्ष्य भी छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों का ही नतीजा होते हैं।
और एक और कथन जिसका आपने जिक्र किया था, वो भी बहुत दिलचस्प है। एक अच्छे यात्री की कोई निश्चित योजना नहीं होती और वो पहुंचने पर आमादा नहीं होता।
हाँ, अध्याय 81 में, ये तो जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है।
सही में, मतलब लक्ष्य पर बुरी तरह नजर गड़ाए रखने के बजाय यात्रा का आनंद लेना, प्रवाह के साथ बहना, जो मिले उसे स्वीकार करना।
बिल्कुल, ये कठोर योजनाओं और अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होकर जीवन को उसके सहज, अप्रत्याशित रूप में अनुभव करने का एक तरह से आह्वान है।
जाहिर है, इतने अलग और क्रांतिकारी विचारों की आलोचना भी हुई होगी समय के साथ। क्या मुख्य आपत्तियां थी या हैं?
हाँ, बिल्कुल हुई हैं। एक तो सबसे बुनियादी सवाल उनकी ऐतिहासिकता पर ही है कि क्या लाओत्से नाम का कोई एक व्यक्ति सच में था या ये कई स्रोतों का संकलन है, क्योंकि लाओत्से का मतलब ही बूढ़ा गुरु होता है।
अच्छा, ये भी है।
दूसरा, वो वे की गलत व्याख्या, उसे निष्क्रियता या आलस्य समझना, जैसा कि खासकर कन्फ्यूशियस के अनुयायियों ने किया, जबकि ये कुशल सहज क्रिया है। तीसरा, उनके न्यूनतम शासन के विचार को अव्यवहारिक या खतरनाक मानना, खासकर उस दौर के विधिवादियों लीगलिस्ट्स ने, जो कठोर कानूनों और सजाओं के पक्षधर थे, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी।
और आजकल?
आजकल भी, खासकर पश्चिम में, कई बार उनके गहरे दर्शन को सरलीकृत करके सतही सेल्फ हेल्प नुस्खों में बदल दिया जाता है, जो उसके मूल अर्थ से दूर हो जाता है।
और वो जो आपने बताया कि मावंगडोई जैसी जगहों पर पुराने ग्रंथ मिले हैं, उनसे ताओ ते चिंग के पाठ में कुछ अंतर भी सामने आए हैं।
हाँ, 1973 में मावंगडोई में रेशम पर लिखे दो ग्रंथ मिले, जो मौजूदा संस्करणों से थोड़े अलग हैं। इससे पता चलता है कि समय के साथ पाठ में कुछ बदलाव हुए होंगे, कुछ विकास हुआ होगा। हालांकि मूल संदेश, जो केंद्रीय विचार हैं, वो काफी हद तक वही रहते हैं। ये बस उस पाठ की जटिल और लंबी यात्रा को दिखाता है।
तो सब कुछ समेटते हुए अगर हम देखें तो लाओत्से का महत्व क्या है? वे क्यों इतने प्रभावशाली बने रहे 2500 साल बाद भी?
हाँ, मेरे ख्याल से लाओत्से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने मानवीय समझ और जीवन जीने के तरीके का एक मौलिक रूप से वैकल्पिक रास्ता दिखाया।
वैकल्पिक रास्ता?
हाँ, जहाँ दुनिया आमतौर पर महत्वाकांक्षा, नियंत्रण, बाहरी सफलता और जटिलता पर जोर देती है, उन्होंने सहजता, सादगी, विनम्रता और प्रकृति की आंतरिक लय पर ध्यान केंद्रित किया। ताओ, वूवे, यिन यांग का संतुलन, अनगढ़ लकड़ी की सादगी, ये सब विचार हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति का स्रोत हमेशा बाहरी जोर जबरदस्ती या दिखावे में नहीं होता, बल्कि अक्सर आंतरिक संतुलन और ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ बहने में भी हो सकता है।
और उन्होंने तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स जैसी गहरी बातों को रोजमर्रा की नैतिकता और यहाँ तक कि राजनीति से भी जोड़ा। ये अपने आप में काफी अनोखा था उस समय के लिए।
निश्चित रूप से, उनके विचार किसी एक समय या संस्कृति तक सीमित नहीं है, वे सार्वभौमिक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि दुनिया से लगातार लड़ने के बजाय, अगर हम उसकी भीतरी बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल बिठाना सीख लें, तो शायद हम ज्यादा शांति, ज्यादा संतुलन और शायद ज्यादा गहरी और स्थायी प्रभावशीलता पा सकते हैं।
तो अंत में हमेशा की तरह श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
जरूर, आज की दुनिया को देखें, जो नियंत्रण करने, हर चीज को मापने, नतीजा हासिल करने के जुनून में एक तरह से कहें तो जी रही है, उसमें लाओत्से के सहज क्रिया वूवे और प्राकृतिक सादगी पो जैसे विचारों को सच में अपनाने से क्या फर्क पड़ सकता है? क्या ये नजरिया हमारी अपनी व्यक्तिगत उलझनों से लेकर पर्यावरण संकट या सामाजिक तनाव जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों को देखने और शायद सुलझाने का हमारा तरीका बदल सकता है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।